created with free version for non-commercial use.
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो नलिननेत्राय वैनोवाद्य विनोदिने राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वं कृष्णप्रियवरीयसि प्रेमभक्ते प्रदे देवी श्रीराधिका त्वं नमोऽस्तु ते श्रीकृष्णचन्द्र भगवान की जय। तो चलिए आज हम चलते हैं बरसाना से नंदगांव। तो कोई कोई संकेत गांव से नंदगांव की यात्रा करते हैं, कोई कोई आसपास की लीला स्थलीय जैसे रिठौर है,
created with free version for non-commercial use,
भानकोर है, फिर श्री मेहरान है, सतायो है, पाई है, तिलोयार है, श्रृंगारवट, बिछोर, अंधोप, सौंद, वनचारी, होडल, दईगांव, लालपुर, हरियोन और सांचुली, फिर गेंडो गांव। इन सारी भिन्न भिन्न लीला स्थलियों का दर्शन करके फिर परिक्रमा कर नंदगांव का दर्शन करते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से स्थान हैं। जैसे रिठौर है, तो रिठौर के बारे में कहा जाता है कि वृषभानु जी के जो बड़े भाई थे उनका नाम था श्री चंद्रभानु और उनकी कन्या का नाम था चंद्रावली जी। तो रिठौर ये चंद्रावली जी का
created with free version for non-commercial use।
और इस गांव के दक्षिण पूर्व दिशा में सघन वृक्षावलियों के बीच में चंद्रावली कुंड है, जहां चंद्रावली जी अपनी सखियों के साथ बाल्य क्रीड़ा किया करते थे। यहां पे एक वल्लभाचार्य जी की भी बैठक है। जैसे हमने चंद्र सरोवर देखा था गोवर्धन में और वहां पे भी वल्लभाचार्य जी की बैठक है, तो उसी प्रकार से यहां रिठौर में भी, जिसे पहले चंद्रभानुपुर कहा जाता था, तो वहां पे भी एक चंद्रावली कुंड है। फिर रिठौर से 4 मील जब हम पश्चिम उत्तर अथवा नंदगांव से 4 मील पश्चिम की ओर आते हैं, तो यहां पे एक स्थान है जिसको भांडखोर कहा जाता है।
created with free version for non-commercial use।
ब्रजराज नंद महाराज के द्वितीय ज्येष्ठ भ्राता जिनका नाम अभिनंद गोप था, ये उनका गांव है और वे यहीं पे वास किया करते थे और यही पास में इनकी गौशाला थी। और कोई कोई इस स्थान को यशोदा जी का पितरालय भी मानते हैं। और गांव के पूर्व में क्षीर सागर विराजमान है। कहते हैं कि शिवरात्रि के अर्धरात्रि में इस कुंड में से बीच में से एक दूध की धारा आती है और इसलिए उसको क्षीर सागर कहा जाता है। तो यहां पे बहुत सुंदर लीला हुई थी और इससे हमें मालूम होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी रामलीला ही सुनी थी जब वे छोटे बालक थे। तो बताते हैं कि एक समय माता यशोदा लाला को लेकर अभिनंद गोप के घर पे आई, तो वहां पे लाला को अच्छे तरह से खिलाया पिलाया, नहलाया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और फिर रात्रि में जब लाला सो रहा था तो मैया ने लाला को रामकथा सुनी, रामायण सुनी और वे बता रही थी कि दशरथ महाराज के 4 पुत्र थे जिनका नाम श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी था और ये चारों भाइयों में आपस में बहुत सारा प्रेम था। फिर छोटे ये थोड़े थोड़े बड़े हो गए, बड़े होने के पश्चात फिर श्री राम जी और लक्ष्मण जी त्राटका को मारने चले गए और उसके पश्चात वहां से आते समय उनका श्री सीता जी से विवाह हुआ। विवाह के पश्चात भी दशरथ महाराज ने उनको राज्यभार सौंपने का विचार किया और माता कैकेयी की इच्छा के अनुसार फिर वनवास में माता सीता को रावण उठा के लेके गया। और जैसे ही लाला ने सुना कि रावण सीता मैया को अपहरण करके लेके जा रहा है, तो तुरंत लाला झट से बेड से जंप किया उसने अपने बिस्तर से और बोला, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ। तो लाला भूल गया कि ये कृष्ण लीला चल रही है और वो रामलीला के जैसे पूरे आवेश में आकर रावण को मारने के लिए निकल पड़े। फिर मैया ने उनको समझाया, लाला मैं तुमको कहानी सुना रही हूं। मैया भी अचरज में पड़ गई कि ये इतना पूरे होशो हवास में इतना कैसे आवेश पूर्ण बोल रहा है कि चलो लक्ष्मण धनुष बांध दे दो, मैं रावण को मार दूंगा। और मैया ये बात को देखकर बहुत प्रसन्न हो गई और सोचने लगी कि मेरा लाला क्या क्या जानता है।
Created with free version for non-commercial use.
तो ऐसी सुंदर लीला है, यही भांडकोर में ही हुई थी। फिर नहीं, भांडकोर में नहीं, ये एक्चुअली मेहरान में हुई थी और भांडकोर में नंदा महाराज का महाराज की गौशाला थी। और यहां पे भंडकोर में दूध, यहां के दूध के भांड गायों के दूध से भरे जाते थे या धोए जाते थे और इसीलिए इस स्थान को भांडकोर कहते हैं। और भांडकोर से 2 मील पश्चिम में मेहरान है जहां पे लाला के ताऊ जो अभिनंद है उनका गांव था, तो वहां पे ये लीला है उनके। तो दूसरा गांव है फिर सातोया,
क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज।
एक्चुअली इसका नाम था सतवास, क्योंकि यहाँ पे सत्रजीत जो भगवान श्री कृष्ण के श्वशुर थे, यानी उनकी पत्नी जिसका नाम सत्यभामा था, उसके पिताजी सत्रजीत, उनका यह स्थान था। और यहाँ पे गांव के उत्तर पूर्व कोने में सूर्य कुंड विराजमान है, जैसे हमने काम्यवन में चर्चा की थी और नंदगा बरसाना में चर्चा की थी कि ब्रज में बहुत सारे सूर्य कुंड है और हर एक सूर्य कुंड की अलग लीला है। तो ये जो सूर्य कुंड है, यहाँ पे सत्रजीत महाराज भगवान सूर्य की आराधना करते थे और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उनको सूर्यकांत मणि प्रदान की, जो सत्रजीत महाराज को प्रचुर स्वर्ण प्रदान कर दी थी।
फिर सतवास से या
सतोया से जब हम आगे चले जाते हैं करीब 5-5.5 मील उत्तर पश्चिम में, तो एक पाई नाव का गांव है, पाई गांव। तो एक समय भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ लुकाछुपी खेल रहे थे और फिर ऐसे जगह पे और छिप गए कि वो किसी को मिल ही नहीं पा रहे थे और सारी सखिया और खास करके राधिका जी बहुत ही व्याकुल हो गए और वे भगवान को खोजने लगे। तो बहुत प्रयत्न करने पर गोपियों ने भगवान को यहीं पे ही ढूंढ लिया और भगवान को पाकर सखियों से श्रीमती राधिका बड़ी प्रसन्न हुई और वे बोलने लगी, पाई पाई पाई, यानी पा लिया। और इसलिए इस गांव का नाम प्रसिद्ध हो गया पाई करके और ये फिर आगे जाके इसको पाया बोलने लगे। और
क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज
सीमा पर ही स्थित है। यहां से आगे हम थोड़ा चले जाते हैं तो दिल्ली का एरिया आ जाता है। तो तिलोयार और एक गांव है, तो तिलोयार का मतलब है तिल मात्र। तो एक बार हुआ क्या कि यहां राधा और कृष्ण सखियों के साथ लीला विलास में अद्भुत रममान हो गए और उन्हें भोजन पाने के लिए तिल मात्र भर भी स्मरण नहीं रहा। घर लौटने की तो बात ही अलग रही, और किसी प्रकार से श्री वृंदा देवी ने इन्हें घर लौटने का स्मरण दिलाया। तो तिल मात्र भी समय का स्मरण न होने के कारण इस स्थान का नाम हो गया तिलोयार। और ये गांव में मेव जाति के मुसलमान और ये भी ब्रजमंडल के सीमा पर ही स्थित है। फिर तिलोयार गांव से जब हम थोड़ा चले जाते 2 मील उत्तर में, तो वहां पे श्रृंगार वंट अवस्थित है। और ये स्थल ऐसा है कि यहां पे गोपों ने या गोप सखाओं ने, ग्वाल वालों ने भगवान श्री कृष्ण का 16 अलग अलग आभूषणों से श्रृंगार करवाया था। और कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से श्रीमती राधिका का केश संस्कार और 16 श्रृंगार स्वयं किया करते थे। और पहले यहां पे एक वट था, जैसे हम वृंदावन में श्रृंगार वट देखते हैं, वैसे ही यहां पे भी एक श्रृंगार वट था। लेकिन अभी वो तो अंतर्धान हो गया, 5000 वर्ष पुराना था, तो धीरे धीरे वो वृक्ष भी अंतर्धान हो गया। लेकिन आज भी ये गांव को श्रृंगार वट ही कहते हैं। तो भगवान की ये जो लीलाएं हैं और लीला स्थलियां हैं, ये अभी भी उन्हीं नामों से प्रसिद्ध है। फिर श्रृंगार वट से हम 1.5 मील दूर उत्तर पूर्व तथा कोसी से 10 मील दूर दक्षिण पश्चिम कोने में जाते हैं, तो वहां पे एक लीला स्थली है और उसका नाम है बिछोर। तो श्री कृष्ण ने यहां पर सखियों सहित श्रीमती राधिका के साथ विविध प्रकार के लीला विलास किया था। और लीला के पश्चात घर लौटते समय दोनों विरह विच्छेद से कातर हो गए, और इसीलिए ये गांव बिछोर नाम से प्रसिद्ध है। बिछोर यानी बिछुड़ना। तो दोनों एक दूसरे से बिछुड़ रहे थे, इसलिए बहुत कातर हुए। और भक्ति रत्नाकर में कहा गया है, क्रीड़ा वासने ते दोहे चले नी जालया, विच्छेद प्रयुक्त ये बिछोर नाम हया। जब क्रीड़ा करने के पश्चात दोनों अपने अपने निज आलय घर जा रहे थे, तो विच्छेद प्रयुक्त ये, विच्छेद होने के कारण, बिछड़ने के कारण इस गांव का नाम बिछोर हो गया। फिर बिछोर से 2 मील उत्तर पश्चिम तथा श्रृंगार वट से 3 मील उत्तर में और एक लीला स्थली है, जिसको आज अंधोप कहा जाता है। और ये जो स्थान है ये भी ब्रज की सीमा पर ही स्थित है। फिर अंधोप से 4 मील दूर उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं, तो वहां एक गांव स्थित है, उसका नाम है सोंद। तो यहां पे नंद महाराज के सबसे छोटे भाई जो थे, जिनका नाम सनंद था, उनका ये गांव है। और ये भगवान के अत्यंत प्यारे चाचू थे। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण इनके पास जाते थे, फिर इनके चाचू जो है सनंद जी, उनको स्नान करवाते थे, वेश की अच्छी रचना करवाते थे, और फिर अपने साथ बिठाकर भगवान को स्वादिष्ट द्रव्यों का भोजन कराते थे। फिर सोंद से 2 मील उत्तर पूर्व में मथुरा दिल्ली राजमार्ग पर एक गांव है, जिसको वनचरी कहते हैं। और यहां दाऊ जी का मंदिर बहुत सुंदर है। और वनचरी से जब हम 4 मील दक्षिण पूर्व दिल्ली मथुरा राजमार्ग पर ही जाते हैं, तो वहां पे एक गांव है जिसका नाम होड़ल है, और इसको पांडव वन भी कहा जाता है, क्योंकि पांडव वनवास के समय यहां निवास करते थे। और पास में ही कई सारे कुंडे हैं यहां पे, जहां पे वे स्नान और जलपान किया करते थे। तो होड़ल से दक्षिण पश्चिम में 1 मील दूरी पर कुंजर वन है, कुंजर यानी जहां श्री कृष्ण सखियों के साथ क्रीड़ा किया करते थे। और कभी कभी बहुत सी सखियां मिलकर कुंजर यानी हाथी बन जाती थी, और श्री कृष्ण उसके ऊपर माहुत जैसे चढ़कर बैठ जाते थे। और इसी क्रीड़ा के कारण इस स्थान को कुंजर वन कहा जाता है। फिर होडल से 3 मील दक्षिण में एक गांव है जिसको दई गांव कहते हैं। तो ये और एक स्थली है जहां पे दान लीला हुआ करती थी। जैसे हमने कई सारे स्थल देखे जहां भगवान दान लीला किया करते थे, जैसे दान घाटी है, दानगढ़ है, सांकरी कोर है, और ये एक स्थान है दही गांव। और यहां दही कुंड भी है, मधुसूदन कुंड है, श्रृंगार मंदिर है, शीतल कुंड है, सप्तवृक्ष मंडली का दर्शन है। फिर शीतल कुंड के तट पर कदंब वृक्षों के नीचे श्रीपाद वल्लभाचार्य की बैठक भी है। फिर यहां से जब हम थोड़ा सा आगे पश्चिम की ओर चलते हैं एक दो ढाई माइल, तो वहां पे एक गांव है जिसका नाम है लालपुर। तो इस गांव के उत्तर में दुर्वासा मुनि का आश्रम है, और यहां पे दुर्वासा कुंड भी है और दुर्वासा जी का मंदिर भी है। फिर आगे एक जगह आता है जिसका नाम है गेंडो। नहीं, गेंडो के पहले भी 3-4 जगह है। तो एक है हरायोन। तो इस गांव का नाम पहले पीपरवार था। यहां श्रीमती राधिका पास क्रीड़ा में श्री कृष्ण को हरा कर उनकी
वंशी।
इस प्रकार से यहां की एक बार क्या हुआ, श्री जी ने अपने सखियों को कहा कि देखो कृष्ण को तो हम हरा नहीं सकते क्योंकि शारीरिक बल में कृष्ण बहुत बलवान है, तो कृष्ण को वैसे हम हरा नहीं सकते, तो क्या करें, तो हम कृष्ण के साथ पाश खेलते हैं। और पास में वो भगवान श्री कृष्ण को हरा देते हैं, पराजित हो जाते हैं, और अपने पराजय के कारण वे अपनी बंसी दाव पे लगाते हैं और बंसी हार जाते हैं। तो ये लीला यहां पे ही हुई थी और इसलिए इस गांव का नाम है हरायो कि हरा दिया भगवान। फिर हराय से 4 मील दक्षिण कोने में या नंदगांव से 6 मील उत्तर पश्चिम कोने में एक गांव है जिसको सांचुली कहा जाता है। तो यहां पे भी एक सूर्य कुंड है और चंद्रावली तो चंद्रावली सखी यही सूर्य पूजा के बहाने से भगवान श्री कृष्ण को मिलने आती थी। जैसे राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए बरसाना के सुंदर सूर्य कुंड पे आती थी, उसी प्रकार से चंद्रावली जी श्रीहरि को मिलने के लिए यहां सांचुली में आया करती थी। और फिर सांचुली ग्राम से 3 मील पूर्व में एक गेंडो नाम का गांव है। यहां श्री कृष्ण और बलदेव सखाओं के साथ गेंद खेलते थे। और इसी गांव में 7 कुंड है। उत्तर में गेंद कुंड है जहां पे श्री राम जी श्री बलराम जी खड़े हुआ करते थे। गांव के ईशान कोण में गेंद खोर है जहां पे भगवान श्री कृष्ण खड़ा होने का स्थान है। और गांव के पूर्व में गैधर वन है। फिर दक्षिण में बेलवन कुंड है
और नैऋत्य
कोण में फिर गोपी कुंड है और पश्चिम में जलभर कुंड है जहां पे गोपियां जल भरने के लिए आती थी। और वायु कोण में विरह कुंड है या विहार कुंड है, विरह नहीं विहार कुंड है। तो ऐसे कई लीला स्थानों का दर्शन करने के पश्चात फिर हम पहुंचते हैं नंदगांव। तो नंदगांव में ब्रजराज नंद महाराज जी का राजभवन है। यहां श्री नंदराय उपानंद अभिनंद सुनंद और नंद महाराज वास करते हैं। और इसीलिए इस गांव को नंदगांव कहा जाता है। तो कहते हैं यत्र नंदोपनंदस्ते प्रति नंदादिन नंदहा चक्रुर्वासम सुखस्थानम यतो
नंदाभिधानम आदि पुराण में इसका
वर्णन किया जाता है। फिर भौगोलिक दृश्य से देखा जाए तो गोवर्धन से 15 मील पर पश्चिम उत्तर कोने में, कोसी से 8 मील पर दक्षिण में, और वृंदावन से 28 मील पश्चिम में नंदगांव स्थित है। जैसे बरसाना की परिक्रमा 4 मील की है, वैसे भी नंदगांव की परिक्रमा 4 मील की है। और यहां पे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित 56 कुंड है। अगर पूरे होश के साथ और श्रद्धा के साथ अगर हम प्रयास करेंगे तो ये सारे कुंडों का दर्शन करने के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं।
Created with free version for non-commercial use.
तो कहते हैं कि देवाधिदेव महादेव ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को प्रसन्न कर यह वर मांगा था कि मैं आपकी बाल्य लीलाओं का दर्शन करना चाहता हूं। जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी और उनको बोला था कि आप जुगल चोड़ी की जो जुगल सरकार की जो लीला है, जो क्रीड़ा है, उनका मैं नित्य दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान ने उन्हें बरसाना में पर्वत बनने के लिए कहा। तो वैसे ही शिवजी को स्वयं भगवान ने श्री कृष्ण ने नंदगांव में उन्हें पर्वताकार में स्थित होने का आदेश दिया। और श्री शंकर महादेव भगवान के आदेश अनुसार इस नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के रूप में स्थित होकर अपने आराध्य भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसे हम जानते हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में अगर परम वैष्णव कौन है तो शिवजी है। तो शिवजी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए इस नंदीश्वर पर्वत पर विशेषता नंद बाबा, यशोदा मैया और गोप सखाओं के साथ अपनी बाल्य एवं पौगंड जो लीला है वो भगवान ने यहीं पे किए। तो कहते हैं कि द्वापर युग के अंत में देवमीढ़ नाम के एक मुनि थे और उनकी दो पत्नियां थी, एक थी क्षत्रिय वंश की और दूसरी थी गोपवंश की। तो पहली क्षत्रिय पत्नी से शूरसेन तथा दूसरी गोप पत्नी से पर्जन्या नाम के गोप जन्म लिए। तो जो शूरसेन हुए उनके क्षत्रिय पत्नी से, तो उनके पुत्र हुए वसुदेव जो कि क्षत्रिय थे, और पर्जन्य गोप जो कृषि और गोपालन के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे, उन पर्जन्य गोप को अपनी पत्नी वरीयसी गोपी के साथ नंदीश्वर पर्वत के निकट आके उन्होंने निवास किया। और एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते 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 वहां पे पहुंचे तो पर्जन्य गोप ने उनकी विधिवत पूजा की और उस पूजा और सेवा से प्रसन्न होकर नारद जी ने उनको संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद
created with free version for non-commercial
use। और फिर उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंत्र की दीक्षा दी और कहा इस मंत्र का जप करने से तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। और नारद जी के चले जाने पर वे पास ही तड़ाक तीर्थ में स्नान कर वहीं पर गुरु प्रदत्त जो लक्ष्मी नारायण मंत्र था उसका नियमानुसार जप करने लगे। तो एक समय मंत्र जप के समय आकाशवाणी हुई कि हे पर्जन्य, तुमने एकांतिक रूप में मेरी आराधना की है, तुम परम सौभाग्यवान हो, समस्त गुणों से गुणवान हो और इसीलिए तुम्हें वैसे ही समस्त गुणों में गुणवान 5 पुत्र होंगे और उनमें से मध्यम यानी 3 नंबर के जो पुत्र होंगे उनका नाम होगा नंद और वे महासौभाग्यवान होंगे. सर्व विजयी सर्व प्राणी मात्र को आनंद देने वाले भगवान गोविंद स्वयं उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे. और फिर ऐसी आकाशवाणी सुनकर पर्जन्य गोप अति प्रसन्न हुए और कुछ दिनों के पश्चात उन्हें 4 पुत्र और 2 कन्याएं पैदा हुई. वे कुछ और दिनों तक नंदीश्वर पर्वत के निकट थे, किंतु कुछ दिनों के बाद केशी दैत्य के उपद्रव से भयभीत होकर वे अपने परिवार के साथ गोकुल महावन जाके बैठे और वही मध्यम पुत्र नंद महाराज के पुत्र रूप में भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रकट हुए. तो कहते हैं कि कुछ समय के पश्चात जब महावन में पूतना
शकटासु
आदि दैत्यों का जो उत्पात हुआ उसे देखकर रजेश्वर नंद महाराज ने सोचा कि अपने पुत्र आदि परिवार वर्ग और गोपियों के साथ हम यहां से निकल पड़ते हैं. और उस उपद्रव के कारण वे फिर आगे आए, फिर छटिकरा ग्राम में रुके, फिर वहां से काम्यवन, फिर वहां से खेलन वन आदि स्थान होकर पुनः वे इस स्थान पे आ गए, नंदीश्वर, जिसको आजकल हम नंदगांव कहते हैं. और यहीं पर फिर भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीला एवं पौगंड की बहुत सी लीलाएं यहां पे संपन्न हुई. और यहीं से गोपाष्टमी के दिन पहले बछड़ों और फिर बछड़ियों को तथा 2-4 वर्ष के बाद गोपाष्टमी के दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने बलदेव आदि सखाओं के साथ गायों को लेकर गोचारण
created with free version for non-commercial use.
तो ये जो नंदगांव है यहाँ पे बहुत सी दर्शनीय लीला स्थलियां हैं. तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नंद भवन से. अभी नंदेश्वर पर्वत से निकट ही दक्षिण की ओर नंद भवन की कुछ भग्न अवशेष दिखाई पड़ते हैं. कहते हैं कि यहां पे बहुत विशाल नंद महाराज का भवन था. इसमें नंद बाबा, मां यशोदा, मां रोहिणी, कृष्ण और बलदेव सबके अलग अलग शयन घर, रसोई घर, भंडार घर, भोजन स्थल और राधिका एवं श्री कृष्ण का विश्राम स्थल आदि कक्ष विराजमान.
Created with free version for non-commercial use.
और यहीं पर मां यशोदा ने अत्यंत आग्रह और प्रीतिपूर्वक सखियों के साथ श्रीमती राधिका प्रतिदिन पूर्वान्न में जावट से आकर परम उल्लास पूर्वक मां रोहिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण के लिए रुचिकर द्रव्यों का पाक करती थी और कृष्णा पास ही के भोजनागार में सखाओं के साथ भोजन करते थे और फिर भोजन के पश्चात 100 पग चलकर शयनागार में विश्राम करते थे. तो आप सोचिए कि भोजन घर से शयनागार जाते समय 100 पग चलते थे, यानी कितना बड़ा वो भवन होगा. और जैसे भक्ति विनोद ठाकुर खूब सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से राधिकार पक्का अन्न विविध व्यंजन तृप्त होए खाए कृष्ण यशोदा भवने, राधा रानी के द्वारा पकाए गए विविध भोजन, क्योंकि दुर्वासा मुनि की सेवा करने के कारण श्री जी को उन्होंने वरदान दिया था कि वे जो भी बनाएगी और उनके पकाए हुए अन्न को जो भी खाएगा उसे किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा और वो दीर्घायु होगा. और यशोदा मैया ने सुना था तो यशोदा मैया ने श्री जी को आग्रह किया कि आप हर रोज आओ और लाला के लिए पाक बनाओ, भोजन बनाओ। तो श्री जी हर रोज जावड़, जो श्री जी का ससुराल था, वहां से वे ठाकुर जी के लिए भोज बनाने के लिए आते थे।
Created with free version for non-commercial use.
और भगवान के लिए सुंदर सुंदर विविध व्यंजन बना के, ऐसे कहते कि श्री जी जब भोग बनाती थी तो एक व्यंजन फिर से नहीं बनता था, यानी हर रोज नए व्यंजन बनते थे और नव नवीन। ऐसे नहीं कि परसों बनाया तो फिर 8 दिन के बाद वही बनाएंगे, नहीं, हर रोज अलग। और ये श्री जी की खास पाक कला थी। फिर यहां पे राधिका जी का विश्राम स्थल भी है, क्योंकि रंधन का यानी भोजन पकाने का कार्य समाप्त करने के पश्चात जैसे यशोदा मैया धनिष्ठा को बोलती थी कि जाओ ठाकुर जी का झूठन लेके आ, महाप्रसाद लेके आ, तो भगवान श्री कृष्ण का जो भुक्ता अवशेष रहता था,
created with free version for non-commercial use,
वो पाकर श्री राधिका जी यहीं पे बगीचे में विश्राम करती थी। और उसी समय सखिया दूसरों से अलक्षित रूप में श्री कृष्ण का उनसे मिलन करवाती थी। तो इस स्थान का नाम है राधा बाग। फिर दूसरा स्थान है यहां पे जिसको वनगमन स्थान कहा जाता है। तो मां यशोदा श्री बलराम जी और श्री कृष्ण का प्रतिदिन नाना रूपों से श्रृंगार करके उन्हें गोचारण के लिए तैयार करते थे, और व्याकुल चित्त से सखाओं के साथ गोचारण के लिए उनको विदा करती थी। तो ये वही स्थान है जिसको वनगमन स्थान कहते हैं। फिर गोचारण गमन मार्ग है। हमारे नटवरण नवकिशोर राम और कृष्ण गोचारण के लिए इसी मार्ग से आगे निकलते थे।
Created with free version for non-commercial
use. राधिका विदा स्थल, यानी मां यशोदा और श्रीमती राधिका को जैसे विश्राम के पश्चात मां यशोदा श्रीमती राधिका को अपनी गोद में बिठाकर रोती हुई उसे जावट के लिए यहीं से विदा करते हैं। फिर आगे एक स्थान है जिसको दधि मंथन स्थान कहा जाता है, जहां पे यशोदा जी नित्य प्रति प्रातः काल में दधि मंथन किया करती थी। और आज भी यहां पे बहुत बड़ी दधि मटकी का दर्शन है। आप सोच सकते हैं कि नंद महाराज के पास इतने सारे दास दासियां थे, लेकिन दधि मथने का काम स्वयं मैया ही करती थी। फिर यहां से आगे एक स्थान है जिसको पौर्णमासी जी का आगमन पथ कहा जाता है, क्योंकि इसी मार्ग से
पौर्णमासी
सांदीपनि मुनि की मां है और भगवान जुगल किशोर के सारे लीलाओं का जो आयोजन ब्रज में करती है वे पौर्णमासी जी है। तो इसी मार्ग से वे नंद भवन में पधारती थी। तो इससे हम जान सकते हैं कि कितना बड़ा नंद भवन होगा। रघुपति उपाध्याय ने नंद भवन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और रूप गोस्वामी जी ने पद्यावली में वो श्लोक उद्धृत किया है। वे कहते हैं, श्रुतिम परे स्मृतिमिति तरे भारत मन्ने भजन्तु भवभीतः अहम् इह नन्दं वन्दे यस्यालिन्दे परम ब्रह्म। भवसागर से भवभीत कोई श्रुतियों का, कोई स्मृतियों का और कोई भले ही महाभारत का भजन करता है तो वो वैसा करे, परंतु मैं नंद बाबा की अहर्निशा वंदना करता हूं, क्योंकि नंद बाबा जिनके आंगन में परम ब्रह्म घुटनों से इधर उधर चल रहे हैं। यस्यालिंदे, बहुत ही सुंदर वर्णन किया, अहम यह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। घुटनों के बल पर वो साक्षात पर ब्रह्म इनके आंगन में खेल रहा था, इधर उधर जा रहा था। फिर नंद भवन से थोड़ी ही दूर दक्षिण में नंदकुंड है, जहां महाराज नंद प्रतिदिन प्रातः काल में स्नान फिर संध्या और मंत्र जप आदि करते थे। कभी कभी कृष्ण बलराम भी उनके कंधों पर बैठकर वहां चले जाते थे और फिर लाला को और दाऊ जी को नंद बाबा वहां पर स्नान करवाते थे। तो कुंड के तट पर स्थित एक मंदिर है जहां पे नंद बाबा और उनके गोद में बैठे हुए लाला है और दाऊ जी की बहुत ही सुंदर झांकी है। फिर उससे थोड़ा आगे नंद महाराज की बैठक है जहां पर ब्रजेश्वर नंद महाराज बड़े और छोटे भाइयों के साथ, वृद्ध गोपों के साथ, पुरोहितों आदि के साथ समय समय पर बैठकर कृष्ण के कल्याणार्थ विविध प्रकार से परामर्श किया करते थे। और यहीं पर बैठने के कारण इसी स्थान को नंद बैठक कहा जाता है। तो 84 कोस में नंद महाराज की कई सारी बैठक है, कहीं पे बड़ी है कहीं पे छोटी है। तो नंद बाबा गोपी आदि के साथ जहां भी निवास करते थे उसे नंद गोकुल कहा जाता था। तो नंद बाबा की बैठक कैसी होती थी उसका भी बहुत सुंदर वर्णन आता है। तो इसका एक प्रसंग इस प्रकार से है कि गिरिराज गोवर्धन को 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर सप्तवर्षीय कृष्ण ने इंद्र का जो घमंड था उसका चकनाचूर कर दिया था और इससे सभी छोटे बड़े जो गोप थे वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने फिर एक बैठक की और उस बैठक के सभापति जो थे वे उपानंद थे जो नंद बाबा के सबसे बड़े भाई।
क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज। गर्ग
संहिता में मेरे ख्याल से आनंद वृंदावन चंपू में वर्णन आता कि वर्जन्य महाराज ने उपानंद जी को ही राजा बनाया था ब्रज का, लेकिन इन पांचों भाइयों में नंद बाबा इतने उनके व्यवहार के कारण इतने मशहूर थे, सारे गोप बालक सारे नंद बाबा के प्रति इतने आसक्त थे कि उनकी वे आसक्ति देखकर ब्रजवासियों की नंद बाबा के प्रति उपानंद जी ने स्वयं होके नंद महाराज को राजा बना दिया। लेकिन नंद बाबा जब तक उपानंद जी से परामर्श नहीं करते थे तब तक वे किसी निर्णय पे नहीं पहुंचते थे। उपानंद जी ने बैठक बुलाई तो उसमें फिर नंद बाबा जी को भी उस बैठक में बुलाया और जो वृद्ध गोप थे वो बैठक में अपना अपना मंतव्य प्रकट करने लगे। वे कहने लगे कि ये श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है क्योंकि इसने जन्मते ही पूतना जैसे भयंकर राक्षसी को खेल खेले में मार डाला। उसके पश्चात फिर शकटासुर है, तृणावर्त है, आघासुर है, इन असुरों को भी इसने मार डाला। फिर कालिया जैसा जो भयंकर नाग है उसका भी इसने दमन किया और अभी कुछ ही दिन पहले गिरिराज जैसे विशाल पर्वत को 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठा उंगली पर इसने धारण किया। और भी ऐसी नहीं कि परिस्थिति अनुकूल थी, परिस्थिति तो पूरी प्रतिकूल थी। मूसलाधार वृष्टि हो रही थी, आंधी तूफान से पूरा ब्रज
विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज।
और उस समय इसने जैसे कि कोई हाथी किसी कमल पुष्प को उठाता है या कोई छोटा बच्चा कुकुरमुत्ते को उठा लेता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने इस विशाल पर्वत को उठाया और सारे ब्रज की, ब्रजवासियों की, उनके साधन संपत्ति की रक्षा की। हमें तो लगता है कि ये निश्चित रूप से कोई सिद्ध पुरुष है या देवता है या स्वयं नारायण ही है। और कई बार तो हमने नंदा और यशोदा का पुत्र मानकर इसे डांटना, डपटाना है, चोरी के लिए उससे उदंड आदि हमने संबोधन भी किया है। तो ये हमारा व्यवहार उसके प्रति जो है ये उचित नहीं है।
Created with free version for non-commercial use.
और इतना सारा हमने करने के पश्चात भी नंदा और यशोदा जी ने हमारे साथ कभी गैर व्यवहार नहीं किया है और ना ही लाला ने कभी हमारे साथ किया है। तो उपस्थित सभी गोपों ने इस वक्तव्य को बहुत ही गंभीर रूप से ग्रहण किया और सभी ने मिलकर नंदा बाबा को इस विषय में सतर्क कर दिया। और नंदा बाबा ने हंसते हुए उनके बातों को उड़ा दिया और वे कहने लगे कि हे आदरणीय सज्जनों, आपका वक्तव्य मैंने श्रवण किया।
Created with free version for non-commercial use.
कृष्ण में कभी भी मैंने किसी देवता का या भगवत्ता का लक्षण नहीं देखा है और ना ही मैं देख रहा हूं। मैं इसे जन्म से जानता हूं। अरे आप सोचो, भला भगवान को कभी भूख और प्यास लगती है? अरे ये तो मक्खन और रोटी के लिए दिन में 50 बार तो रोता है। क्या भगवान चोरी करता है, झूठ बोलता है? ये गोपियों के घरों में जाकर माखन चोरी करता है, झूठ बोलता है और नाना प्रकार के उपद्रव देता है। अरे पड़ोस की गोपियां इसे चुल्लू भर मट्टे के लिए या लड्डू के लिए तरह तरह से नचाती है और इसके साथ खिलवाड़ करती है।
Created with free version for non-commercial use.
और जैसे भी हो, जब इसने हमारे घर में पुत्र के रूप में एक जन्म ग्रहण किया है तब इसके प्रति हमारा यही कर्तव्य है कि भविष्य में यह सदाचार आदि सर्व गुणों से संपन्न आदर्श व्यक्ति बने। हाँ, एक बात है कि महर्षि गर्गाचार्य ने इसके नामकरण के समय यह भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारा यह बालक गुणों में भगवान नारायण के समान होगा, और अतः चिंता की कोई बात नहीं है। और इसके अतिरिक्त कभी कभी कृष्ण के हित में उसकी सगाई के लिए तथा अन्य विषयों के लिए भी यहां पे समय समय बैठक हुआ करती। तो ऐसे होता था इनके बैठक का स्वरूप। फिर हम देखते हैं नंदा भवन के उत्तर कुंड, उत्तर कोने में और एक कुंड है जिसको यशोदा कुंड कहा जाता है, जहां पे मां यशोदा प्रतिदिन स्नान करती थी और वे भी कभी कभी कृष्ण बलराम को अपने साथ लेकर उन्हें वहां नहलाती थी, स्नान करवाती थी और बालकों की बाल क्रीड़ा वहां पे देखकर बहुत आनंदित भी हो जाती थी। तो इसी कुंड के तट पर श्री नरसिम्ह जी का मंदिर है। मां यशोदा स्नान करके पश्चात श्री नरसिंह देव के निकट श्री कृष्ण के कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना किया करती। तो अभी से नहीं, ये पुरातन काल से हम देखते हैं कि लाला के कुशल कल्याणार्थ के लिए भी नरसिंह भगवान से प्रार्थना की जाती थी। और यही यशोदा कुंड के पास ही
क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज
और वहां पे एक प्राचीन गुफा है जहां पे अनेक संत महात्माओं ने अपनी साधना करके भगवत प्राप्ति कर ली है। तो सिद्ध महात्माओं की यह भजन स्थली आज तक जो निरपेक्ष साधक है उनके लिए एक आकर्षण है कि यहां पे वे आके भजन करें। तो यशोदा कुंड के पास ही और एक कुंड है जिसको कारो हरो कुंड कहा जाता है। फिर यशोदा कुंड के पश्चिम तट पर सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण का क्रीड़ा स्थान है जिसको हाउ बिलो कहा जाता है। तो जब लाला अपने सखाओं के साथ खेल में पूरी तरह से
क्रिएटेड विथ फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज
कि उनको भोजन करने का भी स्मरण नहीं रहता था और फिर मैया यशोदा दोनों को बुलाने आती नहीं, पहले वो रोहिणी माता को भेजती थी किंतु उनके बुलाने पे वे जब नहीं आते या उनके पकड़ में वे नहीं आते तो फिर स्वयं चली जाती और अलग अलग भंगिमाओं के द्वारा फिर उनको बड़ी कठिनता से पकड़ कर ले आते और उन्हें स्नान करवाती और भोजन कराती। और कभी कभी यहीं पर दोनों को वो भय दिखाती थी और कहते हैं कि ये हवा का आके आपको गोदी में बिठा के लेके चला जाएगा। तो उस समय कृष्णा मैया से बोलता था, मैया
क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज
मैं हवा को देखूंगा। तो आज भी हम यहां पे हवा के पत्थर की मूर्तियां देखते हैं और इस भगवान की जो मधुर लीला है इसका स्मरण करते हैं। फिर इसके आगे है मधुसूदन कुंड। तो ये जो मधुसूदन कुंड जो है ये इसी पर्वत के उत्तर में यशोदा कुंड के पास है और इसके आजू बाजू में नाना पुष्पों से लदे बहुत सुंदर पेड़ और लताएं हैं और यह कुंड भी बहुत सुशोभित है। यहां मत्त होकर भ्रमणगण सदैव पुष्पों का मकरंद पान करते हैं और सर्वत्र गुंजन करते हैं और लाला अपने सखाओं के साथ खेलते इन भ्रंजरों के गुंजनों का अनुकरण करते हैं। जैसे हर बच्चा किसी ना किसी चीज का अनुकरण करता है तो लाला इन भूंगरों के आवाज का ऐसे आवाज निकाल के उनका अनुकरण करते थे। और वैसे देखा जाए तो भ्रमरों का दूसरा नाम है मधुसूदन और भगवान का भी नाम है मधुसूदन। तो दोनों के यहां गुंजन का स्थान होने के कारण इस स्थान को मधुसूदन कुंड कहा जाता है। फिर यहां पे और एक कुंड है जिसका नाम है पनिहारी कुंड और इसका नामांतर से नाम है पानघाट। तो इसी कुंड का
विशेष
ब्रजवासी पान किया करते थे, पीते थे और गोपरमणियां भी यहीं पे जल भरने के लिए आती थी इसलिए इसको पनघट कुंड भी कहा जाता है। और कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोपियों से मिलने के लिए इसी पनघट पे उपस्थित होते थे। और उल्टा कहा जाए तो गोपियां ही विशेष करके श्री कृष्ण से मिलने के लिए उत्कंठित होकर यहां पे आती थी और जल भरते समय श्री कृष्ण का जी भर के दर्शन कर लेती थी और उस दर्शन के समय इतनी तन्मय हो जाती थी कि उनके हाथ से उनका मटकी खाली है या भरा है वो भूल ही जाती थी.
Created with free version for non-commercial use.
मटकी में वे प्रियतम को अवश्य भर लेती थी. कभी कभी तो कई गोपियां लाला को देखते देखते खाली मटकी वापस भर के निकल पड़ती थी. वो भूल जाती कि हमने उसमें पानी भराया नहीं. तो गोपिया यहां कृष्ण का यह पन यानी प्रतिज्ञा स्मरण करके आती थी कि मैं वहां तुमसे अवश्य ही मिलूंगा, कहीं नहीं तो पनघट में. भगवान और कहीं नहीं मिले तो समझ लो गोपिया उनको मिलने के लिए पनघट पे जाएंगे. और अपना अपनी जो प्रतिज्ञा है उसको निभाने के लिए लाला वहां पे आके गोपियों की प्रतीक्षा करते थे. और इस प्रकार से इस घाट पे दोनों का पन यानी प्रतिज्ञा गोपियों की और लाला की भी पूरी हो जाती थी. इसलिए
Created with free version for non-commercial use.
तो जैसे हमने पहले ही बोला कि अगर अच्छी तरह से ध्यान से श्रद्धा पूर्वक भक्ति से अगर नंदगांव की परिक्रमा करेंगे तो 3 से 4 दिन लगेंगे. तो फिर आगे के जो स्थान है उनकी चर्चा हम कल करेंगे. बोलो नंदेश्वर धाम की जय. बोलो नंद के लाला.
Created with free version for non-commercial use.